बहनों बच्चों, आज 8 अगस्त 2020 का मंगलमय दिन आपके लिए कल्याणकारी हो। आप सब यथाशक्ति जो कुछ आपको समझ में आता है उसे जीवन में उपयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। मैं आज आपको गीता अध्याय 6 का 47वां श्लोक 47 श्लोक टॉपिक योगी नाम अपने सर्वेशम मरे गते ना उत्तरात्मना श्रद्धावान भक्ति योमां सामयिक तमो मता। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तलीन में मन से मेरा भजन करता है वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तपस्वियों ज्ञानियों और कर्मियों में तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त होने पर भी हम की सूक्ष्म गंध रह सकती है, पर भक्त में हम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को उस प्रतिक्षण बदमान प्रेम की प्राप्ति होती है जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। बड़ा सुंदर श्लोक है गीता का। ये भगवान कहते हैं अर्जुन, तपस्वी हो ज्ञानी हो कर्मी हो योगी श्रेष्ठ है, तो योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का भक्त कहने का मतलब है जो भगवान को हृदय से तन मन धन से प्रेम करता है, उसी के आश्रित रहता है, उसी को अपना सर्वसत नावर करता है और उसी से रहकर उसी के लिए जीवन व्यतीत करता है। हाँ, उसका खत्म हो जाता है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान की भी एक विशेषता है कि भगवान प्रेम में है। भगवान का रूप जो है वो प्रेम से परिपूर्ण है, इसलिए उनको प्रेमी भक्त अच्छा लगता है। गीता अध्याय 7वां अध्याय जिसको मैं आपको तीसरा श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ। मनुष्याणाम सस्येषु कश्चित् भक्ति सिद्ध है यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् माम देति तत्वता। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में चलते तो हजारों हैं, लेकिन कोई कोई यत्न करता है। मतलब यत्न का मतलब है विशेष यत्न, विशेष तपस्या, और उन तपस्या करने वालों में कोई एक ही मुझे जानता है, विशेष रूप से जानता है। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। तत्व परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, बार बार मैंने इनकी उस युक्ति को दोहराया है कि द एम ऑफ लाइफ इज टू सी द गोल बट वेल फ्री नो भाई। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई, कठिन है भगवान की प्राप्ति पर चलने वाले बहुत कम है। अभी कहते हैं संसारिक भोग सुविधा में ही रचे पचे रहते हैं, इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा के तरफ चलता है। क्या बताया? माया, मम माया दुरत्य, माया आ जाती है, हजारों मनुष्य चलते हैं कोई एक ही पूछता है, परंतु लगन के साथ भोग इच्छा मान बढ़ाई आराम की इच्छा बिगाने की गाय उनमें भी कोई एक परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। अगर कुछ मनुष्य चलते हैं, हजारों चलते हैं, कोई एक उनको देखने की इच्छा पूर्ण कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान की जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। मतलब हजारों में कुछ चलते हैं, इन पुण्य बाड़ों में कोई कोई भगवान को प्राप्त करता है, जिन्होंने जीवन मुक्त है भगवान को प्राप्त किया है, उनमें से भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा और भगवान पर विश्वास रखता है पूरी तरह से, भगवान ही सब कुछ है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को अर्थात रूप से जानना है। भगवान के अर्थात रूप को व्यक्ति से ही जाना जा सकता है। अगर हम भगवान के सही सही रूप को देखना चाहते हैं तो हमें भक्ति करनी चाहिए। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता या जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। मतलब संसार की कामनाएं खत्म हो जाती है तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो नहीं खत्म होता, तो भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अंत रस प्रदान करते हैं। मतलब भगवान इतनी कृपा करते हैं जो मुक्ति मुक्ति बोलता है ना उसको खत्म करके क्या करते हैं, तो फीका कर देते हैं और प्रेम का रस भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ा देते हैं। अर्थ न धर्म न काम की गति न चुमान जन्म जन्म राम पद बलदान ये हुआ इसका अर्थ। ये कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म प्रत्येक जन्म में मुझे भगवान की भक्ति ही चाहिए। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता, ये एक सिद्धांत है। जैसे रुपये के आकर्षण लोभ से जो सुख मिलता है वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद शांति मिलती है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। देखिए कर्म योग में क्या मिलता है, शांति आनंद। ज्ञान योग में क्या मिलता है, अखंड आनंद। और भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से भगवान का आनंद प्रेम मिलता है। चौथा श्लोक है भूमि रापो अन्लो वायु खम मनोबुद्धि उनका इतने भिन्न प्रकृति रस्तः। पांचवा श्लोक है अपने अमित कठिन विद्धि ने प्रणाम जीव भूतान महाबाहु आया दम धारते जगत। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार इस प्रकार की आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। आपने कई बार परा और अपरा सुना होगा, तो अपरा में क्या क्या आता है, पांच तो ये तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, फिर तीन कहते हैं मन बुद्धि तथा अहंकार, इन हर्ष से क्या बनती है? अपरा प्रकृति। वो हे महाभाव, इस प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी मेरी परा प्रकृति को जान। भगवान कहते हैं इसमें जो जीव है वो परा है, उसको जानो, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। जब चेतन तब अपना प्रकृति के अहंकार के साथ तारतम्य कर लेता है, ये समझने वाली बात है कि जब चेतन तत्व तो मतलब आत्मा अपना प्रकृति कैसे बताया भी हमने आपको, पृथ्वी जल आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसके साथ जब आत्मा मिल जाती है तो क्या होता है, तब वह परा प्रकृति क्या लगता है, तो वो अपरा से क्या बन जाती, परा अपरा जगत और परा जीव, दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां है, स्वभाव है। शक्ति मान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, जैसे नख और केश निष्प्राण प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः परा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहा। अगर दोनों ही भगवान का रूप है फिर क्या बचा, जड़ और चेतन सब एक है। इस जगत को जीव ने धारण करना चाहिए, कैसे, इस जगत को जीवन जीव ने धारण कर रखा है, मतलब क्या है जो जीव हमारे भीतर से क्या रखा है धारण करके, संसार। तात्पर्य है कि जगत ना तो परमात्मा की दृष्टि में है ना महात्मा की दृष्टि में, प्रत्युत जीव की दृष्टि में। जीव जो सुंदर वाक्य है, भगवान की दृष्टि में संसार है ही नहीं, और जो महात्मा बन जाते हैं उनको भी संसार नहीं दिखता, लेकिन ये जीव जो हमारे भीतर बैठा हुआ इसको संसार प्रपंच दिखाई देता है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसमें अपनापन कर लिया है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया है। पृथ्वी से लेकर हंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है, अतः जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि पांच तत्व जानने में आने वाले हैं, ऐसी हंकार भी जानने में आने वाला है। उस हंकार से तारतम्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है, जिससे मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है, समझिए मैं और हूँ हूँ परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और किन हूँ किन में सत्ता मात्र है, मैं परिणत हो जाता है, यही मोक्ष है। ये समझने वाली बात है कि मैं तो मैंने खाया मैंने पिया, जो मैं है ये कौन सी है, अपरा प्रकृति जड़, तो हूँ ये परा है। जब अहंकार से हम अलग हो करके संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो मैं खत्म हो जाता है, अहंकार ही मैं है, अहंकार खत्म हो गया, बचा क्या हूँ हम ब्रह्म सिंह जैसे, किन्ने सपना मात्र है, ये परिणत हो जाता है, यही मोक्ष है। अहम को ध्यान करने से जीव ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया। जीव आया और उसने क्या किया, अहंकार को अपने ऊपर लाद लिया और बन गया मैं हूँ। इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए अर्थात अभिमान में रहकर अपरा प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए तो वह बंधन कारक नहीं होता। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए, जो मैं है ना उसमें अभिमान ना हो जाए अहम ब्रह्मस्मि, तो वो क्या हो जाता है, अपरा प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए तो वह अग्नि वो हम हंकार है तो वो क्या होता है, बंधन में नहीं डालता। जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि कभी बंधन कारक नहीं होते। श्लोक 6, एक दो भूतानी सर्वानी तू पधार अहम तृप्त समस्त जगता प्रभु पल्यस्था। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न होने से संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रत्ययों का संयोग ही कारण है। ये जो हम सब पैदा होते हैं जीव, चाहे वो अंडज हो, पिंडज हो, स्वेदज हो, पांच प्रकार के जो जीव हैं, वो कैसे पैदा होते हैं? अपरा और परा। आपको याद होगा अपरा और परा क्या है। अपरा है पांच तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, आंख से अपरा बना, और परा जीव है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तो सारे संसार का पैदा करने वाला भी और नाश करने वाला भी हूँ। अच्छा, तो सारे प्राणी कैसे पैदा होते हैं? अपरा और परा के संयोग से। अपरा और परा, राजीव है अथवा जल है। व्याख्या, अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर जंगम थलचर जलचर नव जल जलायु स्वेदर उद्भिज मुख्या देवता गंधर्व पितर पशु पक्षी कीट पतंग आदि जिसने भी प्राणी देखने सुनने पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने हुए संयोग से उत्पन्न होते हैं। इतना अच्छा बताया कि इस ब्रह्मांड में, इसी में नहीं अनंत ब्रह्मांडों में, ब्रह्मांड एक ही नहीं जिसमें हम रहते हैं, अनंत है। उनमें कौन कौन, स्थावर जंगम थलचर जलचर नभचर जलचर, सभी प्राणी जो है ये क्या है, ये जो हम जिनको पढ़ते हैं किताबों में सुनते आए हैं, वो किसके संयोग से बने हैं? अपरा और परा। तो अपरा क्या है, पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार, और परा क्या है, जीव। इन दोनों का जब आपस में संयोग होता है तो सब प्राणियों का जन्म होता है। अपरा और परा का संयोग, इन दोनों का मिलन, यह संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा फल हूँ भगवान के प्रति। इसमें भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ। और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, कितनी अच्छी बात है। भगवान कहते हैं मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही उत्पन्न हो जाता हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला, मैं सबका नाश भी करता हूँ, मैं स्वयं भी नष्ट होने वाला, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है, मैं ही इसका नित और उपादान कारण है। भगवान ये जलत रूप से प्रकट हुए हैं, ये जलत भगवान का आदि अवतार है। आदि अवतारा पुरुषा प्रसिद्ध श्रीमद भागवत श्लोक 2:40, आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही है। बहुत बड़ी बात है कि जो कुछ है वो सब भगवान ही है, चाहे नष्ट होने वाला है। भगवान कहते मैं ही नष्ट होने वाला है और मैं ही नष्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपको गीता का स्वाध्याय नहीं तक सुनाती हूँ। अब हम एक भागवत जम्मू के इसमें भागवत सुमन इंजीनियर सुमन भान जी लिखते हैं, अनुभूति ऑफ महादेवी तीर्थ माई ऑब्जर्वेशन about Mahadev Tirth Temple Kullu HP. Congratulations on the 50th edition of Sharda Bani. Me and my family have long association with the temple and Mataji since 1993. Three decades have seen Mahadevi Tirth rising from mini school to mega centers with architectural features, especially wood carving with local art features. In future, it will be marble of Kullu. Temple rich with huge marble statues of different gods, goddesses, paintings depicting Mahabharata, Ramayana, situated at proper design places with the blessings of Swamiji. In 1990, when I visited temple and came with my family, met Mataji, her two lieutenants, Swami Vivek and Swami Kumar Dasji, former incarnation of Yogi, later Lord Hanuman, busy with their assignments. On the bars of temple, few lines were written. Baba got the mother, mother got the Baba. Selfless service is ultimate. Education is life. Respect woman as divine mother, Astra Astra. I had so many opportunities to travel with Mataji around SP Punjab, JK, Haryana, Delhi, Singapore. All activities in and out door are controlled by Mataji and her two lieutenants with proper planning with blueprints. During these years, attended few classes, discourses at places, had very little time to attend, being over busy with my busy service schedule. During one of our discourses, class, I do remember, was explaining the difference, other features of universe and man. From Mataji's belt, man is made in image of God. Man has bestowed with higher intelligence and finer perception. Man has been granted freedom of thought, action, but has missed it for his selfish aggrandizement. Man is assigned finer and sublimer part in the universal Dharma. Man being self-centered and is apt to forget and deny his father God. Man being lean and being physical is more amenable to the influence of Maya. Man being egocentric is proved to assert his ego through I, me and mine. Man is consciously forgets or willfully neglects his higher divine assessment. Man thinks and acts with his ego consciousness. Man is subjected to cosmic law of karma and thereby suffers and consequences of his egoistic views. Thereby he loses last and best chance of his spiritual evolution and emancipation. Man deprives himself partaking enjoying divine gift of God. Man ignores inner voice of his soul and has audacity to play dual game of serving two masters, God and demon, in that he is sincere and honest to none. Man is playing role with his own soul and divinity under magical spell of Maya. Man has become profane, confused and lost in materialistic world and is unable to understand and discriminate between right and wrong, good and bad, virtue and vice, God and Maya, heaven and hell. manners, engrossed in the pursuit of Maya, has no time to think higher human qualities by deliberately ignoring and forgetting higher and finer cosmic assignments allowed to him. While other creatures of universe cannot disobey, dictates their inner instincts, they are working in tune with the divine will. Thus they work for upwards evolution of their souls, being sincere and honest to their inner dictates. They are saved from the clutches of slavery of the demon Maya and implication of karmic law. Their thoughts and deeds are governed by the divine will reflected in their instincts. They are free from all baser elements of egoistic consciousness and consequent sufferings and miseries from which higher species men suffer. Other creatures are unconsciously carrying on their cosmic assignments and working for the fulfillment of their cosmic programs. All creatures expect men have one universal common reason of total surrender and allegiance of their inner instinct, which they follow unconsciously. This universal religion is inherent and inlaid in each species of creation and requires no outside preaching. In contrast, mankind profess various religions which are imposed outside and conflict in their dogmas, beliefs, rituals and rites. After going through the lessons of Maya and it took me very long time to understand point and God wise, we have to elevate our souls and break the web and cocoons of Maya to understand who am I. Then join temple Maji. Shukade was only 33 years old man at present. I am grandfather and spending my happy life with my family, relatives and extended families of Mandir with attractions like intelligence, energy, power, etc. The divine love which reflects every aspects of cosmos. There is universal laws like attracts light. This is reflected and projected as attraction, affection, devotion and love. All souls are projections and constitute of divinity. Hence, under the universal law, like attracts light, all souls have natural pull towards each other at the spiritual plane and also towards their mother soul. There are numberless discourses and lessons from Mataji will try to continue to write ever to make you all understand by the grace of Mataji. इंजीनियर सुमन भान जम्मू इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी गीता में